राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 26 मार्च 1993 प्रातः लगभग 5 बजे शीतल में हुआ। राम
राम राम राम राम राम राम
सबको है, कुत्ते को भी है मैं हूं और मनुष्यों को भी सबको है। मानो नीचे नीचे प्राणियों के भी ऊंचे प्राणी सब में है और देवताओं में है, भूतों में, प्रेत पिशाच सब में है। ये स्थावर है, उनमें भान नहीं होता है उसका, वो सुषुप्त अवस्था है, बस है उसमें मैं हूं। ये जो मैं हूं हूं ये आता है मन में, तो इसमें मैं हूं एक दो चीज है, एक मैंपन है एक हूंपन सत्ता है। तो हूंपन सत्ता है ये तो परमात्मा का स्वरूप है और मैं है ये प्रकृति का स्वरूप है। महाभूतानी अहंकार हो, अहंकार प्रकृति का स्वरूप है। जो प्रकृति के स्वरूप को अपने लोगों दोनों को मिला लिया, इसका नाम मैं हूं। अब इस मैं को छोड़ दे और हूं रह जाए, केवल हूं रह जाएगा, तो मैं छोड़ते ही हूं नहीं होगा, फिर है हो जाएगा। मुख मैं के संबंध से ही हूं होता है। अगर मैं का संबंध नहीं रखे तो यह है, तू है, वह है, चार हुआ। तू है, यह है, वह है, इसमें है ही रहेगा और मैं होते ही हूं होता है। तो मैं के कारण हूं हुआ नहीं तो है ही रहेगा, है ना। परमात्मा का वो सब जगह परिपूर्ण है। अब मैं के हूं के साथ मैं लग गया तब ये जीव हो गया, इसको ये जड़ चेतनी गांठी पड़ गई। जड़ तो है अहम, जिसमें मैंपन और हूं ये सत्ता, ये चेतन। तो हूं ये चेतन और मैं जड़ दोनों मिला गया, ये जड़ चेतन ये जड़ ग्रंथि, ये ग्रंथि हो गई। ग्रंथि को खोलना क्या है कि अहम अपना स्वरूप नहीं है, अपना स्वरूप सत्ता है, मैं अपना स्वरूप नहीं है, ऐसे मैं को क्या कर रहे, ये खुल गई। ये ग्रंथि भेद होते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्धंते सर्वसंशया क्रियंते तस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परमात्मा के साक्षात्कार होने पर विद्यते हृदय ग्रंथि, ये हृदय ग्रंथि है, भेद हो जाती है। तो ग्रंथि भेद क्या हुआ कि अहम है, ये मैंपन है, मैंपन, ये मैंपन अपना स्वरूप नहीं है। अपना मैंपन में जो सत्ता है वो हमारा स्वरूप है, मैं अपना स्वरूप नहीं है, ये अपना स्वरूप अलग मैंपन देख लिया। तो ग्रंथि भेदन हो गई और मैं हूं ये ग्रंथि है, इसको ग्रंथि कहते हैं। और ग्रंथि भेदन क्या होता है, ग्रंथि छिद्यम से सर्व संशया, अब संशय सब मिट जाते हैं, कोई संशय नहीं जाता। और क्षीयंती से कर्माणी, अहम होने से ही कर्म होते हैं। अगर उसकी संदेह होता है तो वो अपने में लगता है संदेह में, छिपतेन संशयम ज्ञानार्चना पर ज्ञान रूपी तलवार से इस संशय छेदन करो। चौथे अध्याय ग्रंथ बताए छिपतेन संशयों में वो उत्तृष्ट उत्तृष्ट भारत का अज्ञ सहस्त्र संशयाता विनश्यति। 40वें श्लोक में आया है चौथे अध्याय में, अज्ञ अश्रद्धा धारणस्त, अज्ञ है और अश्रद्धा रहा, श्रद्धा नहीं रखता है। तो अज्ञ क्या जानता नहीं और अश्रद्धा मन मानता नहीं, श्रद्धा और शास्त्रों पर शास्त्र की बात मानेंगे, संत महात्माओं पर श्रद्धा संत महात्माओं की बात मानेंगे, गुरु पर श्रद्धा गुरु की बात मानेंगे, ऐसी किसी बात मानेंगे वो विश्वास पूर्वक जो मानना है उसका नाम श्रद्धा है। तो अज्ञ सर अश्रद्धा दान स्तर, अज्ञ होती जानता नहीं और मानता नहीं, संशय आत्मा वो विनश्यति, उसका नाश पतन हो जाता है। तो वो संशय दूर कैसे हो, चाहे तो स्वयं विवेक पूर्वक संशय उच्छेदन कर दे, चाहे कहने की बात मान ले, मान ले और जान ले, दो बात हुई। तो भक्ति में मानने की बात है, ज्ञान में जानने की बात है, कर्मयोग में करने की बात है। तो जान ले ठीक तरह से जानना, ठीक तरह जानना तब है जब ग्रंथि भेदन हो जाए, अहम बिल्कुल इसे थम्बे की तरह अहम अलग भान वो अपने से, अपना स्वरूप अलग है, अहम अलग है, तो ग्रंथि भेदन हुआ और मैं ये हूँ ये ग्रंथि है, ये भेदन अलग अलग नहीं जानता, एक रूप मानता है, ये है दृष्टिदन ग्रंथि। तो अज्ञ है, अब अज्ञ तो सभी होता है, पर वो श्रद्धा होता है, वो विचार करो जो सुन करके शास्त्र में ऐसा कहा, संतों ने ऐसा कहा है, गुरु महाराज ने ऐसा कहा है, महात्मा लोग ऋषि मुनि ऐसा कहते आए हैं, उन पर श्रद्धा कर लेता तो मान लेता श्रद्धा पूर्वक और अश्रद्धा मानता नहीं। तो बताए संशय आत्मा में नायन लोगों से न परो न सुखम संशय आत्मा, संदेह रहता है उसके लिए ये लोग भी सिद्ध नहीं होता। भोजन करेगी इसमें ठीक गुण है कि रमाओ गुण है, ये ठीक है कि ये बेठीक है, ये अनुकूल है ये प्रतिकूल है, ये ठीक पड़ेगा बेठीक पड़ेगा, तो जगह 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 संदेह रहता है। तो संदेह व्यवहार को भी बंद करता है, परमार्थ को भी बंद करता है। संदेह रहित होने से काम ठीक होता है, कहते हैं विवेचन करते हैं सुनाते हैं, उसमें भी संदेह रहता है तब तक ठीक सुना नहीं सकते। संदेह वाला मतलब व्याख्यान देवे व्याख्यान ठीक नहीं सुना सकेगा, संशय विपरीय रहता है, उस दूसरे में संदेह रहता है, भ्रम प्रमाद लिप्सा करना पाठव ये दोष होते हैं, तो ठीक विवेचन नहीं करता। तो संशय रहना नहीं चाहिए, संशय वो नायन लोगों से, इस लोक में भी काम ठीक नहीं आ, कहीं विश्वास करेगा तभी काम होगा, संदेह हो तो काम क्या करेगा, होती जाएगी। और न परा परलोक भी सिद्ध नहीं होता, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, धर्म का अनुष्ठान नहीं होता, स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति के लिए भी संदेह रह जाएगा, करेगा कब होता था ना, हम लोगों से न परा न सुखम संशय आत्मा, संशय आत्मा को सुख भी नहीं होता, संदेह दुविधा में दोनों गया माया मिली निराम, तो छंद दे था ये दुविधा में टिक चाहिए, बीचों में यह बात है, अपने मारवाड़ी शब्दों में दो उड़ चिंता दुविधा है, दुविधा दो उड़ चिंता रहेगी, दो यूं करेंगे यूं करेंगे और ज्यादा करेंगे, और दो उड़ चिंता है उसको दुविधा, न सुखम संशय ना ही लोगों से न करो न सुखम संशय आत्मा, तो सुख नहीं होता। संशय को दूर करे, तब संशय को दूर करते दो तरह से, तो अधूरी अधूरी ज्ञान जानकारी में जो पूरी जानकारी मान लेनी है ये ज्यादा खतरनाक होती है, का तो तिल कोरा बलार काली तेल कढ़ा है, अश्मिन जो किशोर होती है वो न तेल में तो तिल में, तो कह तो जानता नहीं कुछ तो ठीक हो जाए, अरे जानता पूरे जानता ठीक हो जाए, वैद्य अच्छा वैद्य होता है निरू कर लेता है, और नहीं जानता वो हाथ ही नहीं लगाता, मगर अधूरा वैद्य मार देता है, ठीक क्या कर दे मार दे, पूरा जानते नहीं दवाई दे दी उल्टी पुलटी, ये कहीं डाल सुना होगा तो और तो उपचार कर गई सर, कहीं कहीं के बने रिएक्शन हो गया, हम जानते नहीं भाई क्या रिएक्शन हो गया, तो रिएक्शन क्यों हो गया, जान पे बह नहीं, दूध चल दी थी पर उज्जैन हो गया, खराब हो गई। इसलिए रिएक्शन होता है इनमें, साधन नहीं ऐसे होता। जो सुनाने वाले कहने वाले हैं उनमें संशय कहते हैं ना, तो अधूरी जानकारी, अधूरी जानकारी के रिएक्शन हो जाता है। तो वे ऐसे सुने हुए भी न सुनने वाला से नीचे हो जाते हैं। कुछ श्रद्धा, कुछ दुष्टता और कुछ संशय और कुछ ज्ञान के घर के रहे में घाट के जू धोबी के समान। धोबी का कुत्ता होता है तो बैल पर कपड़ा लुला करके, गंदे पर कपड़ा लाद कर चल पे, कुत्ता साथ वाला घर से बीच में बाजार निकल लड़ाई फिर गई, तो वो घर का रहा घाट का, घर के बल तो छूट गया, घाट तो पहुंचा नहीं, तो घर का नहीं घाट का, कोरो बेटा फाट गया, घर का नहीं घाट का। असंधनासन इस वास्ते है, ये 40वां है श्लोक, चौथा अध्याय का, तो चार चार 44 धारा लागू हो जाएगी, 44 धारा लागू हो जाएगी। तो संशय को छेदन करेंगे, संशय का छेदन करना चाहिए। तस्मान अज्ञान संभूतम, अज्ञान से तो पैदा होता है, और अज्ञान में कुछ ज्ञान में थोड़ा सा जानकारी उत्तम संदेह होता है, कुछ नहीं जानता संदेह नहीं होता, कुछ दिखता है नहीं अंधेरे में, दिखता अंधेरे में खड़ा दिखते है, स्थान रुआ पुरुष हो गई थी, ये स्थान पुरुष में लखड़ा है आदमी क्या है गया, संदेह होता है। तो कुछ नहीं दिखता संदेह पैदा नहीं होता, और पूरा लखड़ा दिखता संदेह रहता नहीं, अधूरा जानकारी में संदेह होता है, हरेक विषय में अधूरी जानकारी में संदेह होता है। कुछ नहीं जानते तो उसका प्रश्न पैदा नहीं होता, पूरा जाने प्रश्न नहीं रहता ही नहीं, तो वो संदेह रहते हुए उनको पूरा ज्ञान मान ले वो होता है नास्तिक। थोड़ा सा हम जानते हैं, सब जानते हैं, हम हतम मानते हैं, मैंने कई बार देखी, बहुत पढ़ा है मैंने, बहुत सुंदर मिला, कुछ नहीं है, ठगी है कोई, दुकानदारी है, हम जानते हैं सब, तो ये हो गया नास्तिक। वो संदेह रहते वो अपने ज्ञान पर जो दृढ़ता कर लेता मूर्ख होता है, और संदेह रहने पर जितना जाना उतना अंश तो अच्छा है, नहीं जानना अंश है, ये कैसे मिटे, जानकारी कैसे पूरी, वो होता है जिज्ञासु, वो होता है साधक, कि वास्तव में क्या है ये चीज, ज्ञान क्या है, कर्म क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, साधन क्या है, साध्य क्या है, साधक क्या है, साधक साधन कैसे करता है, कैसे साधन, ऐसी जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा हो तो उसको ज्ञान हो जाता है। तो जिज्ञासा जागृत करनी चाहिए, जितना जानते हैं उतना बढ़िया, पर नहीं जानते हैं उनमें संतोष मत करो, नहीं जानते उसमें और जानो, और जानो, और जानो, जानने के लिए इतना बाकी पड़ा है जो बंद ही नहीं होता है। उस जानकारी में अगर शास्त्र पढ़ने लगोगे तो उम्र बीत जाएगी, शास्त्र पूरा नहीं होगा, उम्र बीत जाएगी। बूढ़े बूढ़े काफी आदमी बैठे पढ़ते हैं, अभी तो पढ़ते हैं, तो शास्त्र का अंत नहीं आएगा। अनंत पारम खुले शब्द शास्त्र, स्वल्पम तथा आयुर्वस्त बिघना, विघ्न बहुत है, शास्त्र अपार है। तो शास्त्र की पढ़ाई की इच्छा होनी एक और चीज है, पिपट इच्छा होती है जानने की, सब वो भी जिज्ञासा ही पड़ेगी, परंतु वास्तव में जिज्ञासा होनी चाहिए मुमुक्षा सहित। एक मुमुक्षा होती है, एक जिज्ञासा होती है। मुमुक्षा भीतर में मुक्ति की इच्छा, मेरा छूट जाऊं, तो मुमुक्षा की कब होती है कि बंधन का अनुभव होता है, कि बंधन है तब मुमुक्षा होती है, बंधन का अनुभव ही नहीं होता, रुपया इकट्ठा करना है, मान पढ़ाई करना है, अपने को अच्छा बनना है, ये इच्छा हो गई, और मुमुक्षा जिज्ञासा ही नहीं, वो शास्त्र जानने की इच्छा होती, पढ़ाई पर निकल रहेगा, परंतु मुमुक्षा होती है ना, तो मुमुक्षा तेज होनी चाहिए, तेज मुमुक्षा होती है वो फिर संतोष नहीं करता। अरे सत्संग में मन नहीं लगेगा, अरे पुस्तक में मन नहीं लगेगा, अरे विचार में मन नहीं लगेगा, कैसे छूटूं, राग होता है, द्वेष होता है, हर्ष होता है, शोक होता है, जगह बड़ी हलचल होती है मन में, सबसे मिट सकता है आदमी, इनसे रहित हो सकता है, परंतु कैसे हो ये जोरदार मुंसा होती है, तब जिज्ञासा होती है तत्व की कि परमात्मा क्या है, जीवात्मा क्या है, जगत क्या है। और ये जिज्ञासा के बिना सीखना होता है वो शास्त्र की पढ़ाई है, उसमें जान लग रहा है इसको जीव कहते हैं, इसको परमात्मा कहते हैं, इसको ईश्वर कहते हैं, इसको ब्रह्म कहते हैं, ये सगुण है, ये निर्गुण है, ये साकार है, निराकार है, ये भक्ति होती है, ये नवदा भक्ति है, दसदा भक्ति है, ब्रह्म प्रेम भक्ति है, अगात्म का भक्ति है, राधात्म का भक्ति है, ये जानकारी है, ये जानकारी जानकारी जारी भरी। तो ये दो तरह का मोह बताया गीता ने, एक तो मोह करेलम बुद्धि मोर दल बुद्धि से, ये मेरा है, ये तेरा है, इतना धन हो जाए, इतना ये हो जाए, ये मोह दलदल है। इसके बाद में सूची विपृति पत्ति, शास्त्रों में कोई अद्वैत करते हैं, कोई अद्वैत करते हैं, कोई शब्द्वैत करते हैं, कोई विशेषाद्वैत करते हैं, कोई द्वैताद्वैत करते हैं, कोई भेदा भेद करते हैं, कोई अत्यंत भेदा भेद, ये शास्त्र का जाल है। तो इनमें फंस जाएगा तो निकलेगा नहीं, पर एक को पकड़ लेता है, दूसरा खंडन करता है, एक का मनन करता है, उम्र बीत जाती है, तत्वबोध नहीं होता, वो दूर जान पड़ गया। ये मोह रूपी जाल है संसार में, संग्रह करना भोग भोगना ये मोह जाल है, और संग्रह भोगों से ऊंचा उठ जाता है, फिर शास्त्र में लग जाता है, द्वित अद्वित विषय द्विताद्वित महामोह, द्विताद्वित महामोह है, एक मोह है, ये द्वित अद्वित विषय महामोह है। महामोह में फंस के एक बात को पकड़ लेता है कि ये ठीक है, पकड़ी बात लिया, अब दूसरे का खंडन अपने मंडन, बड़ी भयंकर दशा है, ये साधक के काम की चीज नहीं है, अपने साधन लो पर खंडन मत करो, मंडन मत करो, बात उनको पास तो भाई ये ठीक है, इस तात्विक बोध होता है, ऐसे उसमें से चुप तो रहो। सारम तत्व ग्राही मैसे फलगु, निरंतर चीजों का त्याग करके सार ग्रहण करना चाहिए, हम तो सार ग्रहण के सीरी, नाना मत को देख निरंतर देख भाई बिलगिरी, साधो हम तो सार ग्रहण के सीरी, सबने सार 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 सबका सार, पुष्प भी सट पद जैसे भवरा होता है तो सोचता सब मधुमाखी होती है सबसे मधुमिता मिठा ले लेती, ऐसे इस बार साधु को मधु की वृत्ति करते हैं, मधु को जैसे भवना ले जो भिक्षा लेने के पा लिया, तो इस तरह से सबसे सार है, सब बातों का सार सार उनको तत्व को पसंद है। तो सार फिर क्या है कि भाई अपने किससे बंधन है, किससे मुक्ति है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, ये भी बड़ा एक रहस्य का विषय है, पता नहीं लगता इसका। पढ़ाई करते हैं तो क्या होता है कि पढ़ाई में ब्रह्म भी अपनी बुद्धि का विषय है, जीवात्मा की जीवात्मा भी बुद्धि का विषय है, प्रकृति और संसार भी बुद्धि का विषय, मानो जानने की हमारी बुद्धि का विषय है, तो बुद्धि का विषय होता है वो बुद्धि से अतीत नहीं होता, बुद्धि का ही विषय हो गया तो बुद्धि से अतीत कैसे होगा, तत्व है इससे गुणातीत है, तत्व बुद्धि में आता नहीं है, वो बुद्धि से भी अतीत है। इस बात से मति नहीं लगे, यही मति लगे, मति उसको नहीं लगती, मति को लगता है, बुद्धि को जानता है, बुद्धि उसको नहीं जानती, तो बुद्धि के जाल में फंसी हुई पढ़ाई होती है, बुद्धि से ऊंचे नहीं उठते, ऊंचे उठे बिना अगर तत्व की प्राप्ति होती नहीं, और बुद्धि से ऊंचा उठना बड़ा कठिन होता, ये मैंने पढ़ा है, देखा है, सुना है, विचार किया है, तो बुद्धि से ऊंचा उठना बड़ा कठिन होता, अब बुद्धि से निश्चय करो तो बुद्धि से निश्चय किया हुआ तत्व नहीं होता, बुद्धि से निश्चय किया हुआ है तो निश्चय करो, दृढ़ता से निश्चय करो, ऐसा करो तो ये बोध नहीं होता, वो वही रहता है, बुद्धि के नीचे रहता है, बुद्धि ऊपर रहती है, बुद्धि आप मालिक है। मेरे कोई प्रश्न करते हैं तो मैं तो प्रश्न करता से प्रश्न करके पूछता हूँ कि बुद्धि और मन क्या है, और बुद्धि और मन हम है हमारे से अलग है, तो बता करता हूँ मैं, तो जो पूछे जिज्ञासा उनको कहता हूँ कि बुद्धि एक और चीज है, आप अलग हो, आप बुद्धि के ज्ञाता हो, बुद्धि आप नहीं हो, आप करता हो, बुद्धि कारण है। अब कर्ण साधन होता है, एक कर्ण निरपेक्ष साधन होता है, कर्ण से भी ऊंचा साधन वो कर्ण निरपेक्ष साधन, इसकी चर्चा बहुत कम आती है शास्त्रों में भी, इसका विवेचन बहुत कम होता है। तो कर्ण रहता है तब तक कर्ण के साधन होता है, तो साधक तमाम कर्णम होता, कर्णम जिनसे अंत कर्ण है, ये वही कर्ण है, ज्ञानेन्द्रिया कर्मेन्द्रिया वही कर्ण है, और मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अंत कर्ण है, भीतर का कर्ण है, साधन है, औजार जिससे काम होता है वो औजार कहते हैं ना, ऐसे जाने का औजार उसको कर्ण कहते हैं। कर्ण और कर्ता ये काम करते हैं क्रिया में, क्रिया जो की जाए, कुछ किया जाए काम, उस क्रिया में साधु होते हैं, कारक सब होते हैं क्रिया करने वाले, और परमात्मा क्रिया से और पदार्थों से अतीत है, ये पदार्थ है, ये क्रिया है, इन पदार्थ और क्रिया से अतीत है तत्व, तो वो क्रिया के द्वारा समझ नहीं, क्रिया को उनको नहीं जान सकते, पदार्थों के द्वारा नहीं जान सकते, इन चीजों से नहीं जान सकते, ऐसे जो ये कर्ण कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान अधिकरण छह कारक है, कारकों से परमात्मा तत्व का ज्ञान नहीं होता, कारकों से क्रिया सिद्धि होती है, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, कारक नाम की शायद जो क्रिया के जनक हो, तो क्रिया संबंधी भी कारक होता है, क्रिया जनक भी कारक होता है, तो वास्तव में क्रिया का संबंध रखने वाला होता है वो कारक होता है, और असली कारक क्रिया जनक होता है वो, इस संबंधी सृष्टि वो होती है, संबंध में संबंधी कारक नहीं है वो, साध उसी कारक सही होते हैं, तो कारक है क्रिया जनक होता है, तो क्रिया की सिद्धि के लिए कारक होता है, तो कर्ण के द्वारा क्रिया सिद्धि होती है, कर्ण के द्वारा परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि कारण कारक शब्द ही क्रिया सिद्धि में है, क्रिया से अतीत तत्व है, और क्रिया के द्वारा ही उसको जानते हैं, उसमें एक बात याद आ गई, आप लोग क्षमा करेंगे, वो मेरे बुरा न माने, अंतकरण शुद्धि होने से ज्ञान होता है, अंतकरण से ज्ञान होता नहीं है, ज्ञान अंतकरण से अतीत है, अंतकरण का विषय नहीं है ज्ञान, तो बोध है तत्व का ज्ञान, वो ये ज्ञान है जैसे घटपटादी ज्ञान है, ये कर्ण साध्य है, ये कर्ण के आता है, परंतु तत्व बोध है वो कर्ण में नहीं, कर्ता भी नहीं है वहां पर, तत्व में कर्तृत्व भी नहीं है, जो सब में कर्ता स्वतंत्र कर्ता, क्रियायाम स्वातंत्र भविष्य तो अर्थ कर्ता, कर्ता होता है क्रिया में स्वतंत्र सब था, वो कर्ता होता है, और साधु होता है वो कर्ण होता है, क्रिया का विषय वो कर्म होता है, जहाँ करते हैं वो अधिकरण होता है, और जिसको दिया जाए वो संप्रदान होता है, आया जाए वो अपादान होता है, ये अलग अलग कारक है, तो क्रिया सिद्धि में कर्ण है वो उपयोगी ज्यादा होता है, ज्यादा उपयोगी उस नाम ही कर्ण होता है, तो कर्ण के द्वारा क्रिया की सिद्धि होगी, क्रिया से पदार्थों से अतीत है वो कर्ण के द्वारा बोध नहीं होगा उसका, तो अंतकरण शुद्धि है, अंतकरण शुद्धि अशुद्धि नहीं, अंतकरण के संबंध विच्छेद की आवश्यकता है, वो संबंध विच्छेद समझने के लिए अंतकरण की शुद्धि है, अंतकरण शुद्धि परमात्म तत्व की प्राप्ति में नहीं है, प्राप्ति की तरफ चलने में उपयोगी है और चलने में साधन है, तो अंतकरण अशुद्ध होने से उसकी जिज्ञासा नहीं होती है, पर जिज्ञासा अशुद्ध अंतकरण में हो जाती है, शुद्ध में तो होती है, शुद्धि होती है उसमें भी अंतकरण में एक तीक्ष्णता होती है, एक स्थिरता होती है, स्थिरता होती है, एक तीक्ष्णता होती है, और एक निरावरण होता है, मन आवरण होता है, एक ढक्कन आवरण होता है, एक भीष्म में मल दोष होता है, तो मल विक्षेप आवरण तीन दोष होते हैं, तो मल दोष है वो ढक्कन जो आड़ा आया हुआ है, विक्षेप जो चंचलता है, और मल जो पाप है नहीं पहले, ये अंतकरण होते हैं, तो इनको दूर करने में समय लग जाता है, और तत्व की प्राप्ति जल्दी नहीं होती, तो जिज्ञासा होता है, जब जिज्ञासा जागृत हो जाए तो जिज्ञासा में अंतःकरण से भी ऊंचा उठे, कर्तापन से भी ऊंचा उठे। कर्ता होता है उससे भी ऊंचा कर्तापन होता है, वो अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, कर्ता मानता है वो विमूढ़ आत्मा का है गुणा में गीता में। तो गुणा गुणेश वर्तन्ते, इंद्रियाणि इंद्रियाणि वर्तन्ते, कर्तृत्व स्वयं में नहीं है, गुणों में है, प्रकृति में है, बुद्धि में है, इंद्रियों में है, इनमें ये कर्तापन है, कर्तापन नहीं। तो कर्तापन भी इधर रहेगा, कर्ण कहां से रहेगा, तो कर्ता से अतीत होगा, कर्ण से अतीत होगा, तब तत्व का बोध होगा। इनसे अतीत ये अपना स्वरूप नहीं है। अब देखो जो स्वयं अपने आप को मैं हूं कहता है, तो मैं पर तक जड़ है, प्रकृति है, तो मैं होकर के अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता बनता है, अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला कर्ता बनता है। अहंकार से मोहित नहीं होता है तो कर्ता नहीं होता, वो अकर्तृत्व होता है। तो स्वरूप में कर्तृत्व नहीं है, कर्तृत्व रहित है, कर्तापन में नहीं है। तुम कर्तापन में नहीं है तो कर्ण कैसे रहेगा, फिर कर्ण शुद्ध शुद्ध होता, शुद्ध क्या मतलब हो? जब कर्तापन भी वहां नहीं है, कर्तृत्व से ही रहित है, कर्तृत्व भोक्तृत्व संसार है, संसार कर्तृत्व भोक्तृत्व, और कर्तृत्व भोक्तृत्व ऊंचा और रखता परमात्मा की तत्व प्राप्ति होती है, तो जिज्ञासा होता है, तो जिज्ञासा होता है वो कर्तृत्व से ऊंचा उठता है, ऊंचा उठना चाहता है। ठीक तरह से कर्तृत्व हमारे में नहीं है, कर्तृत्व तो क्रिया क्रिया में रहे, पदार्थों में रहेगा, तो पदार्थों में क्रिया रहेगी, कर्तापन भी देर रह गया, तो कर्ण अगर कैसे चलेगा? कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान अधिकरण सरकार के सबसे मुख्य कर्ता है, तो कर्तापन भी वह नहीं है तो कर्ण वह कैसे पहुंचेगा? दो नंबर का कारक है, एक नंबर का कार्य करता है, इसमें छह कारक है, छह नंबर अज्ञान जा रहे, कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान अधिकरण, जिसमें चार तो क्री धातु गए, दो धातु दा धातु गए, कर्ता कर्म कर्ण अधिकरण ये तो क्री धातु गए हुए, संप्रदान अपादान एक देना एक आडर लेना, ये दो कार्य ऐसे हो गए, चार कार को क्रिया हुई, तो क्रिया भी थोड़ी हो करके कर्ण चलती है, तो क्रिया से अतीत चल रहे हैं और कार्य सब क्रिया क्रिया में ही समाप्त हो जाते हैं, क्रिया जनकत्व कारकत्व होता है और क्रिया से अतीत तत्व है, तो तत्व में कर्ण कैसे पहुंचेगा, कैसे कर्ता पहुंचे, कर्ता भी नहीं पहुंचता हुआ तो कर्ण पहुंचता ही नहीं, तो कर्ण अंतःकरण के द्वारा बोध नहीं होता है, अंतःकरण के त्याग से होता है। अंतःकरण में सबसे तेज है बुद्धि, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, इनमें समझने के लिए बुद्धि मुख्य है, ऐसे मूल रूप में तो अहम वृत्ति है, पर अहम वृत्ति के बीच में जो जानकारी है उस अलग बुद्धि है। अंतःकरण चतुष्ट है, इसका अर्थ चार वृत्तियां है, उन वृत्तियों का नाम चार बताया है, अंतःकरण वो एक है, ये चार वृत्तियां है, उसमें जो जानने की वृत्ति है, ठीक तरह समझने की वृत्ति है, उसको बुद्धि वृत्ति कहते हैं। तो बुद्धि है वो बुद्धि भी वहां परमात्मा को दान करे, इंद्रिय भी परार्थ अर्थ व्यस्त परम मन मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धिर आत्मा महान पर महत्व परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषा पर पुरुषार्थ परम कि साकार था सा परागति, तो इंद्रिय में परा अर्थ अर्थ व्यस्त पर मन मन सस्तु परा बुद्धि और बुद्धि आत्मा महान पर, ये आत्मा है महत्व का नाम, तो महान महत्व पर है और महत्व परम अव्यक्तम इससे परे है अव्यक्त प्रकृति, तो प्रकृति तक भी बुद्धि नहीं पहुंचती, कर्म नहीं पहुंचता कार्य में, तो ये कार्य ये उनका कारण है, तो कार्य होता है वो कारणों को नहीं देख सकता, कारण में तो कार्य रहता है, कार्य में कारण अंतर नहीं आता, तो ये महत्व का बुद्धि का बुद्धि हुआ, बुद्धि से मन हुआ, मन से अगर इंद्रिया हुई तो इंद्रिया मन इंद्रिया मन तक इंद्रिया नहीं पहुंचती, महाभूता ने अहंकार बुद्धि अव्यक्त में होता अव्यक्ता में वो अव्यक्त है, महाभूता ने अहंकार बुद्धि अव्यक्त में इंद्रिया दस एक अंत है, विकार है, पहले प्रकृति विकृति है और वो केवल प्रकृति है, प्रकृति अव्यक्त है, वो केवल प्रकृति है। और ये सात प्रकृति महाभूतानी अहंकार बुद्धि, ये सात प्रकृति विकृति है और इंद्रिया दस एक अंत है, ये विकृति है सोलह, ये सब प्रस्त हुआ है। तो महत्व परम अव्यक्तम अव्यक्ता पुरुष पर, पुरुषार्थ न पर कभी विस्तार का पर आ जाती।